और इन सारे आदमों को पार करते हुए सरतुल्मुंतहा को पार करने के बाद जन्नत रखी गई है। अल्लाह के नबी जन्नत में पहुंचे, आप जन्नत की एक एक कैफियत बयान फरमा रहे थे। हदीस में आता है, आपने फरमाया, मैंने देखा तो उसके गुंबद मोतियों के थे और जन्नत की ब्यूटी मुश्क की थी। फिर आपके पास आपके सामने जहन्नम लाई गई। जहन्नम कहीं मकाम नहीं है, जहन्नम नीचे है, जन्नत ऊपर है। लेकिन जन्नत के बाद जहन्नम का भी मुशाहदा कराया गया। आप फरमाते हैं, उससे ज़्यादा घबरा देने वाला मंजर मैंने कभी नहीं देखा। जन्नत और जहन्नम के मुशाहदा के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और ऊपर पहुँचते हैं, तो ये मकाम आता है, उसका नाम है शरीफुल अक्लाम। शरीफुल अक्लाम का माना है कलमों के चलने की जगह। कलमों के चलने की जगह यानी अल्लाह ताला जो तकदीर बंदों की अपने इल्म में रखते हैं, वहाँ लिखने वाले सारी तकदीर लिखते हैं। और जितनी बातें अल्लाह की तरफ से बताई जाती हैं, वो सब बातें वहाँ लिखी जाती हैं। तो तकदीर लिखने की वो जगह है, वो एक बहुत बड़ा आलम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं उस मकाम पर पहुंचा जिसको मकाम शरीफुल अक्लाम कहते हैं, और मैंने कदमों के चलने की आवाज़ सुनी। उसके बाद जो आलम है वो अर्श आज़म और अर्श अज़ीम का आलम है, और अल्लाह तबारक व तआला का अर्श वहाँ से शुरू होता है। लेकिन मालूम होना चाहिए अर्श तख्त को कहते हैं, लेकिन हम जैसे तख्त को समझते हैं कि ये लकड़ी से तख्त बना हुआ है, ये वैसा तख्त नहीं है। मादी चीज़ों से बना हुआ नहीं है, वो रूहानी है। अल्लाह ही जानते हैं उसकी कैफियत क्या है। और अर्श आज़म इतना बड़ा है, हदीस में आता है कि सातों आसमान सातों ज़मीन अर्श के सामने ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े मैदान में अंगूठी डाली जाए। एक बहुत बड़े मैदान में अंगूठी रखी जाए तो अंगूठी नज़र नहीं आएगी। अर्श आज़म के सामने सातों आसमान और सातों ज़मीन की यही हैसियत है। वहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अर्श आज़म के पास अल्लाह के नबी पहुँचे, अल्लाह तबारक व तआला की रूहे थी, अल्लाह का दीदार हुआ और अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी का शरफ मिला, अल्लाह से गुफ्तगु नसीब हुई। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के देखने को भी फरमाते हैं और अल्लाह से कलाम की बात भी फरमाते हैं। और बादशाह मना करते हैं कि अल्लाह की रूयत नहीं हुई, हाँ अल्लाह से हम कलामी हुई। बहरहाल उसकी हकीकत हम यहाँ बैठ कर नहीं बयान कर सकते। अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा है, अल्लाह से हम कलामी की है। अक्सर सहाबा कराम इसी पर है, और जमहूर ही कहते हैं कि मेराज में अल्लाह को आपने देखा है और अल्लाह ताला से हम कलामी हुई है। उस मौके पर अल्लाह की तरफ से आप पर बड़ी इनायतें बड़ी नवाजिशात हुई और आपको अल्लाह ने तीन तोहफे अदा किए। पहला तोहफा आपको 50 नमाजें अल्लाह ने अदा की, बाद में चलकर ये 5 नमाजें हो गई। तो कुल 50 नमाजें अल्लाह की तरफ से आपको पहला तोहफा के तौर पर दी गई। दूसरा तोहफा सूरह बकरा की जो आखिर की दो आयतें हैं, आमना वसूल बीमा उन्हीं नहीं में वब्बी, वहाँ से मंसूर नाल कौमिन काफिरीन तक ये आयतें दी गई। जब जुमा पहले इससे मुतालिक तफसील आ चुकी है कि आमना वसूल के अंदर अल्लाह ने क्या मजबूत बयान किया है, और इस उम्मत की अल्लाह ने जो फजीलत बयान की है अल्लाह अकबर उसमें से बता रहे हैं। तीसरी फजीलत और तीसरा तोहफा, तीसरा आदिया अल्लाह ने यह दिया कि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपकी उम्मत में जो भी मेरे पास इस तरह से आएगा कि उसने दरार बराबर शिर्क ना किया हो, मैं उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। अल्लाह ने यह जमानत दी, जिसने बिल्कुल शिर्क ना किया हो, शिर्क से बड़ी रहा हो, तो उसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे। उलमाए किराम लिखते हैं हदीसों की रोशनी में कि कबीरा गुनाह करने वालों को भी अल्लाह ताला अंबिया किराम की सिफारिश से और फरिश्तों की सिफारिश से जन्नत में दाखिल करेंगे, और ऐसे कबीरा गुनाह करने वाले जिनको फरिश्ते और अंबिया भी पहचान ना सके, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से सबसे आखिर में उनको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करेंगे, बशर्ते के उन्होंने कभी शिर्क ना किया हो, शिर्क का धब्बा उनके साथ ना हुआ हो। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे और उनका नाम जन्नत में अतीकुर रहमान या कुतफाउर रहमान होगा और इनकी जन्नत में बड़ी फजीलत होगी। हदीस में आता है जन्नत में दाखिल